التفسير. سورة النجم مکی سورت ہے، اس کے 3 رکوع اور 62 آیات ہیں، جبکہ الفاظ اور کلمات کی تعداد 365 ہے، 365، اور حروف 1450 ہے، 1450. اس سورت کا نام پہلے ہی لفظ سے لیا گیا ہے، ون نجمی، اور یہ اس کا علامتی نام ہے. سورت کا عنوان نہیں ہے، محض علامتی نام ہے. اس سورت کا مرکزی مضمون بھی جزا اور سزا کا اثبات ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے معزز ترین فرشتے کے ذریعے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. اور اہل مکہ کا جو شرک کا عقیدہ تھا اور شفاعت باطل، اس کی تردید کی ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یہ قرآن مجید کی وہ پہلی سورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک مجمع عام میں سنایا تھا. مجمع میں کافر اور مومن سب موجود تھے. آخر میں جب آپ نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کیا تو تمام حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے، اور مشرکین کے وہ بڑے بڑے سردار تک جو مخالفت میں پیش تھے سجدہ کیے بغیر نہ رہ سکے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کفار میں سے صرف ایک شخص امیہ بن خلف کو دیکھا کہ اس نے سجدہ کرنے کی بجائے کچھ مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگا لی اور کہا کہ میرے لیے بس یہی کافی ہے. بعد میں میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں ہلاک ہوا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اس سورت کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. تو مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرنا مستحب ہے، فرض نہیں. اگر کبھی چھوڑ بھی دیا جائے تو جائز ہے. اس واقعے کے یہ جو جب آپ نے سورت پڑھی تھی اور سارے کافروں نے سجدہ کیا تھا سوائے امیہ بن خلف کے، اور بعض کہتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ تھا، یہ اس واقعے کے ایک اور عینی شاہد ہیں، مطلب بن ابی ودعا کہتے ہیں کہ میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا. مسند احمد کی روایت ہے کہ جب حضور نے سورت نجم پڑھ کر سجدہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگ آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے، تو مطلب بن ابی ودا کہتے ہیں کہ میں نے سجدہ نہ کیا، اور اسی کی تلافی اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس سورت کی تلاوت کے وقت کبھی سجدہ نہیں چھوڑتا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس سورت کا موضوع بھی ہے اور مضمون بھی، کہ کفار مکہ کو اللہ کس طرح سے ان کے رویے پر تنبیہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا رویہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تھا وہ بڑا ہی غلط رویہ تھا. آیت نمبر 1 سے لے کر 18 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو تمہیں سنایا جا رہا ہے یہ کسی کاہن نجومی کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب ترین فرشتے کے ذریعے سے آپ پر نازل کیا ہے. کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وحی، جبریل علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی ہے. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى, نجم. اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہاں پر نجم یعنی ستارے کی قسم کھائی گئی ہے. نجم کسے کہتے ہیں؟ بعض نے ان نجم سے مراد سریا ستارہ لیا ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد زہرہ ہے, وینس. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد تمام ستارے ہیں جن سے نجوم. تو یہاں پہ قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى, ہوا کے معنی آپ کو آتے ہیں نا, اوپر سے نیچے گرنا. اور ہوا کا لفظ جو ہے آہوا, خواہشات کے لیے بھی بولا جاتا ہے نا, کہ اگر انسان اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کہ بلندی سے نیچے گر جائے, کیونکہ اس کی خواہشات جو ہیں وہ غلط ہوتی ہیں, خراب ہوتی ہیں, سب نہیں لیکن زیادہ تر. تو وَالنَّجْمِ قسم ہے ستارے کی, تارے کی, اِذَا هَوَى, جب وہ گرے, جب وہ غروب ہو جائے. تو یہاں پہ ستارے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ صبح ہو گئی اور ستارے غروب ہو گئے. دوسرے اس کے معنی مفسرین نے یہ بتائے کہ رات کے اختتام پر فجر کے وقت جب ستارے گرتے ہیں یا شیاطین کو مار بھگایا جاتا ہے, تو اسی طرح یہ ستارے قیامت کے دن بھی گریں گے. تو وہ اللہ جو کہ رات سے صبح کرتا ہے, وہ اللہ جو کہ ستاروں کو گراتا ہے, تو وہ اللہ قیامت بھی لا سکتا ہے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى, تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. اور مَا ضَلَّ, یہاں پہ ایک جو ہے ضَلَّ ہے اور دوسرا ہے غَوَى, اس کے کیا معنی ہیں دولا اور غوا کے؟ دولا کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں, دوالین ہے نا. تو عام طور پر یہ لفظ انسان کی اس گمراہی کے لیے آتا ہے جس کا تعلق بھول چوک سے ہو, فکر یا اجتہاد کی غلطی سے ہو. دولا دوسرا لفظ ہے غوا, اور غوا جو ہے غین و یا, اس کے معنی ہیں ایسی گمراہی جو نفس کی اکساہٹ اور آدمی کے قصور کو, اور آدمی جان بوجھ کر جو غلطی کرے جس میں آدمی کے قصور کا بھی دخل ہو, تو اس کے لیے غوا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. فرمایا کہ نہ تو بھٹکا ہے اور نہ ہی بہکا ہے, کون؟ صاحبکم, تمہارا ساتھی. اور یہاں پہ صاحبکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا, اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ ہمارا رسول, صاحب نہ بھی تو کہہ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا صاحبکم, تو مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا کہ اہل مکہ کے اوپر, اہل مکہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو واضح کیا جائے. نبوت سے پہلے 40 سال آپ نے اہل مکہ کے درمیان گزارے, دن رات آپ کے معمولات ان کے سامنے تھے, آپ کا اخلاق, آپ کا کردار, آپ کی عادتیں اور خصلتیں کیسی تھیں. تو اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ نبوت سے پہلے یہی شخص جسے تم امین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے, پھر ایسا کیسے ہو گیا کہ جو ہی اس نے نبوت کے بارے میں کہا تو تمہیں یہ بات جو ہے جھوٹ لگنے لگی, اور تم کہنے لگے کہ یہ جو ہے انہوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى, تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. तुम खुद देख सकते हो कि प्यारे रसूल की ज़िंदगी आप लोगों के सामने है। और अबू दाऊद की रवायत है, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी ज़बान से कभी कोई बात हक के सिवा नहीं निकली। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। आयत नंबर 3 में है, वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता। नुत्क होता है ना बोलना, तो वो नहीं बात करते अनिल हवा अपनी ख्वाहिश नफ्स से। इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, ये तो एक वही है जो उस पर नाजिल की जाती है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जज्बात पर बड़ा ही कंट्रोल था। आपकी ज़बान से कोई बात खिलाफ वाकया जो है वो नहीं निकलती थी। अब आप देखें कि हत्ता के आप जब मिजाह करते थे, खुश तबई करते थे, तो उन मौक़ों पर भी आपकी ज़बान मुबारक से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता था। इसे तिर्मिज़ी ने रवायत किया है। तो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुहा, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता, ये तो एक वही है जो उस पर नाजिल की जाती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वही जली हो या वही खफी, आपके अक्वाल आपके अफाल जो हैं ये सारे वही की शक्ल हैं। और आपको पता है ना कि एक वही मतलू थी, मुराद कुरान है, और दूसरा जो है वो वही गैर मतलू। तो आप जो हैं वो जो कुछ पेश करते हैं वो सारा कुछ आपकी ख्वाहिशात नफ्स से जो है वो पाक होता है, वो सारा का सारा जो है वो सही होता है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है, आपकी जो सीरत है, आपके जो अक्वाल हैं, आपके जो अफ़ाल हैं, इस पर गवाही दी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने आप पर कुरान भी नाजिल किया और आप पर हिकमत भी नाजिल की, और हिकमत है आपकी सुन्नत। तो जो कुछ अल्लाह ताला चाहते थे वो आपके दिल पर डाल देते थे और आप फिर उसको पेश करते थे, और जो कुछ आप पेश करते थे वो आप अपनी तरफ से नहीं करते थे, बल्कि ये तो एक वही है जो उस पर नाजिल की जाती है। फिर आयत नंबर 5 से लेकर 18 तक अब इसी का ज़िक्र किया जा रहा है कि वही जो है वो किस तरह बग़ैर किसी शक व शुबा के रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की जाती, और जो फ़रिश्ता वही लेकर आता था तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो उनके औसाफ बताए गए हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो हैं उनका तारुफ करवाया गया है कि बड़ा ही साहिब अक़ल साहिब राय और बेहतरीन मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ता जो है वो वही लेकर आता था। तो मकसद क्या है बताने का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर एक तरफ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत की कसम खाई जो पहली आयत है, दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे पक्के और सच्चे रसूल हैं और जो वही है वो अल्लाह का कलाम है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से घड़कर कुछ पेश करते हैं। अल्लामा हू रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया है, तालीम दी है। आपके उस्ताद थे कौन? शदीदुल क़वा, ज़बरदस्त कुव्वत वाले ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी है। तो यहाँ पे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की जो पहली सिफ़त है वो क्या है? शदीदुल क़वा। और शदीद जो है इसके मानी है ज़बरदस्त, और अल-क़ुवा क़ुवा जो है इसके मानी हैं कुव्वत के। तो शदीद कुव्वत वाले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कवी अज़ा के मालिक और नहायत जोर आवर थे। दूसरी सिफ्त है जू मिर्रातिन, बड़े जोर वाला, बड़ी ताकत वाला, ये दूसरी सिफ्त है। अब आप देखें कि मिर्रातिन जो है इसका मादा है मीम रा रा, ये तलखी के लिए भी आता है ना, मुर्रुन सच कड़वा होता है ना, तो तलखी के लिए भी आता है। इसी तरह जो है ये गुजर जाना मर्रा या मुर्रु, गुजरना किसी का, तो इमरा उन मर्द को भी कहते हैं जो गुजर के जाता है। इसी तरह ये लफ्ज़ जो है मजबूती से बटना उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, मजबूती से बटना मिर्रा, मर्रा तुन बार, तो शिद्दत किसी चीज़ की दायमी हालत, ताकत मजबूती, मरीर बटी हुई रस्सी को भी कहते हैं। तो मिर्रा जो है ये कुव्वत, जिस्मानी मजबूती, खुश मंजर, खूबसूरती सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो हैं इनकी दूसरी सिफ जो सामने आई वो है ज़ू मिर्रातिन, जो ज़ोर आवर हैं। और फिर तीसरी उनकी जो सिफत आई फस्तवा, फस्तवा जो है सीन वो या से है, फस्तवा सीन वो या से है, और जैसे मुसावी, पूरा करना, बराबर करना, दुरुस्त करना, ठीक ठीक करना, तो फस्तवा के मानिए फिर वो सीधा खड़ा हो गया। तो फरमाया कि वो सीधा सामने आकर जो है वो खड़ा हो गया। तो ये भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की सिफ़त है कि जब वो तालीमात और वही को अल्लाह से लेकर आते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाते थे, तो यहाँ पे उनका जो है वो ज़िक्र किया जा रहा है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्ताद हैं। और सूरत तकवीर आयत 19 और 20 में भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की सिफ़ात बताई गई हैं, इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्श मकीन। और फस्तवा जो है इसके एक मानी ये हैं फस्तवा के फिर वो सामने आ खड़ा हुआ, फिर वो नमूदार हुआ। तो बाज़ लोग कहते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी असली शक्ल में आए थे, फस्तवा वो सामने आ खड़ा हुआ, हुआ बिल उफ़ुक़िल आला, जबकि वो बलाई उफ़क पर था। उफ़क किसे कहते हैं? आसमान का मशरक़ी किनारा जहाँ से सूरज तुलू होता है और दिन की रोशनी फैलती है। सूरत तकवीर की आयत नंबर 23 में जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो उसे उफ़क़े मुबीन कहा है। तो आप सूरत तकवीर की आयत 23 को ले और सूरत नजम की आयत 7 को, तो आप जो है देखेंगी कि ये दोनों आयतें दलील देती हैं कि पहली मर्तबा जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र आए तो उस वक्त वो आसमान के मशरक़ी किनारे से नमूदार हुए थे। फस्तवा वहुआ बिल उफ़ुक़िल आला, फिर वो सामने आ खड़ा हुआ जबकि वो बलाई उफ़क पर था, वो आसमान के मशरक़ी किनारे पर था या वो बुलंद आसमान के किनारों पर था। तो आसमान के किनारों पर जा खड़े हुए। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो जो है वो फस्तवा, वो आ खड़ा हुआ, वो नमूदार हुआ, एक इसके माने ये बताए जाते हैं कि वो आए और आकर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही सिखाने के लिए आप सामने आ खड़े हुए। दूसरा ये है कि जब वही जो है वो सिखा ली, तो सिखाने के बाद इस आसमान के किनारों पर जा खड़े हुए। तो उनका जो आना और जाना है यहाँ पे, उसका जो है वो जिक्र किया जा रहा है। और बिल उफुक आला, जैसा कि मैंने बताया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उफक की बुलंदियों में से जाहिर हुए थे। ये क्यों आए थे? ताकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम जो वही है वो सिखा दें। अब आप देखें कि ये जो सारी सिफात हैं ये जिब्रील अलैहिस्सलाम की सिफात हैं। जैसे बाज़ लोग जो हैं ये समझते हैं कि ये अल्लाह की सिफात हैं, तो जम्हूर मुफस्सरीन की राय है कि ये सारी सिफात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की हैं, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो है वो तालीम दी, और उन्होंने आकर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो सिखाया। और रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को दो दफ़ा असली शक्ल में देखा, एक लैलतुल मेराज में, जो सिदरतुल मुंतहा एक बेरी का दरख्त है जो छठे या सातवें आसमान पर, और ये आखिरी हद है, इससे ऊपर कोई फरिश्ता नहीं जा सकता। तो उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने कहा था कि अब इससे आगे जो है मैं नहीं जा सकता। और दूसरा जो है वो वही के मौके पर, कि जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, वही लेकर आए थे, और बाज़ लोग कहते हैं कि वो सूरत मुदस्सिर की आयात थी, और उस वक्त आपने जब जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके 600 पर थे, और एक पर जो है वो आसमान और ज़मीन के दरमियान जो है वो फैला हुआ था। तो दूसरी वो दफ़ा, तो दो दफ़ा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में देखा है। अच्छा, अब जो आयत नंबर 9 है, तो इससे पता चलता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब आ गए थे। तो यहाँ पे रसूलल्लाह की और जिब्रील अलैहिस्सलाम की बाहमी क़ुर्बत का ज़िक्र किया गया है। अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का इजहार नहीं है जैसे कि बाज़ लोग ये समझते हैं, तो किसका इजहार है? रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अलैहिस्सलाम की बाहमी कुर्बत का। फ़कान क़ाबा क़ौसैनी औ अदना फ़ौहा इला अब्दिही मा औहा। आयत नंबर 7 के बाद के वहुआ बिल उफ़ुक़िल आला, आयत नंबर 8 है तुम्मा दना फतदल्ला। आयत नंबर 8 में क्या कहा गया कि तुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ। आप देखें कि दुनिया का एक रूट क्या है, दाल नून वाव, इसका रूट भी दाल नून वाव है, और मानी क्या है, करीब होना, तुम्मा दना। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम करीब हुए किसके? रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फतदल्ला, फिर वो आगे बढ़ा, फतदल्ला, और करीब होने के साथ ही वो जो है वो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुअल्लक हो गए। फतदल्ला जो है इसका मादा है दाल लाम वाव, और बिलअमूम ये फासले के नज़दीक होने के लिए इस्तेमाल होता है। दल्व डोल को भी कहते हैं ना, जैसे डोल को पानी लेने के लिए जो है वो समंदर के या फिर कुएं के करीब कर देना। तो सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ, फतदल्ला, और जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुअल्लक हो गया, नज़दीक हुआ और उनके करीब आ गया, उतर आया उनके पास। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की अब तक कितनी सिफ़ात पढ़ी, आयत नंबर 5 में शदीदुल क़वा, आयत नंबर 6 में दो सिफ़ात, नंबर 2 ज़ुमिर्रतिन, नंबर 3 फ़स्तवा, फिर उसके साथ ही जो है नंबर 4 वाहुवा बिल उफ़ुक़िल आला, नंबर 5 सुम्मा दना फ़तदल्ला, ये सिफ़त है कि बहुत करीब आए और ऊपर मुअल्लक हो गए। तो कुर्बत का आयत नंबर 8 से भी पता चलता है और आयत नंबर 9 से भी, फ़का नकाबा कौसैनी, यहाँ तक के दो कमानों के बराबर औ अदना या इससे भी कुछ कम फासला रह गया। फिर किया क्या, फ़ाउहा इला अब्देही मा औहा, तब उसने अल्लाह के बंदे को वही पहुँचाई जो वही भी उसे पहुँचानी थी, यानी अल्लाह का जो पैगाम था वो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। अच्छा, अब आप देखें कि आयत नंबर 9 जो है इसमें काबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसका मादा है काफ वो बा, इसके मानी है ज़मीन को गोल खोदना, ज़मीन को गोल खोदना, जैसे काबल अर्ध। इसी तरह काबा जो है ये मिकदार अंदाज़ा उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कमान के कोने से कब्ज़ा तक का जो फासला होता है ना उसको भी कहते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहम बहुत करीब थे, बाहमी कुर्बत का ज़िक्र है और फासला कितना था, फकाना क़ाबा पस था फासला, क़ाबा के मानी क्या है, मिकदार अंदाज़ा, पस फासला था, मिकदार थी क़ौसैने, क़ौस इसका मादा है काफ वाव सीन क़ौस, और ये एक कुमान को कहते हैं ना, कौस एक कुमान और कौसैन ये तस्निया है, दो दो कुमाने, तो एक कमान जो है उसका जितनी उसकी लंबाई होती है या जितना उसका फासला होता है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो कमानों का फासला था, कि फकाना काबा पस वो करीब थे या नज़दीक थे, बराबर थे, काबा बराबर थे कौसैन दो कमानों के, औ अदना या फिर इससे भी कुछ कम, इससे भी कुछ कम। तो अरबों के यहाँ मुहावरा भी इस्तेमाल किया जाता है, हुआ अला क़ाबा कौसैन, कि वो मेरे नहायत करीब है। और यहाँ पे औ जो है ये ताकीद के लिए इस्तेमाल हुआ है और इसके मानी है कि बल्कि इससे भी कम फासला था, यानी दो कमानों से मुराद क्या है कि दो हाथ, और बल्कि इससे भी कुछ कम। तो दरअसल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बाहमी कुर्बत का ज़िक्र है, और ये बाहमी कुर्बत जो है ख़ास तौर पर दो मौक़ों पर है, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था, एक जो है वो मेराज के वाक़े में और दूसरा बेसत के इब्तदाई ज़माने में, जब के आप पर आयात जो थी वो नाजिल हुई थी। फ़ाहु औहा इला अब्देही मा औहा, तब उसने अल्लाह के बंदे को वही पहुंचा दी जो वही भी उसने पहुंचानी थी। मा कज़बल फुआदु मा रआ, मा कज़बा झूठ नहीं कहा, अल्फुआदु दिल ने, मारा जो देखा इसने, तो दिल ने जो कुछ देखा था उसमें झूठ नहीं मिलाया। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को असली शक्ल में देखा, उनके 600 पर थे, एक पर मशरिक और मगरिब के दरमियानी फासले जितना था उस पर फैला हुआ था, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल ने झुठलाया नहीं, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को जब उनकी असली शक्ल में देखा तो आपने इसको अल्लाह की अजीम कुदरत समझकर उसको जो है वो कबूल कर लिया, उसको तस्लीम कर लिया कि ये है अल्लाह की कुदरत। और ऐसा नहीं था कि आपने इसको जो है वो रात के अंधेरे में जो है वो देखा था, बल्कि अल्लाह ताला कहते हैं अफा तुमारूनहू अला मा यरा, क्या पस तुम उस चीज पर उससे झगड़ते हो। अफा तुमारूनहू मीम रा या शक व शुबा करना, तथा मारा भी आप पढ़ चुकी हैं, और मारा झगड़ा करना। तो क्या तुम झगड़ा करते हो उस चीज के बारे में, अला मा यरा, जिसे वो आंखों से देखता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम को जब उनकी असली शक्ल में देखा था, तो उस वक्त जो है ऐसा नहीं था कि कोई रात हो, अंधेरा हो, या आपको कोई बात समझ में ना आई हो। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दिल ने भी उसको तस्लीम किया और आंखों ने भी उसको तस्लीम किया कि आपने जिब्रील अलैहि सलाम को उनकी असली शक्ल में देखा है, और ये जिब्रील फरिश्ता है जो अल्लाह की तरफ से वही लेकर आया है। और जिब्रील अलैहि सलाम के अल्लाह के सफ़ीर और फरिश्ता होने में कोई शक नहीं, और वही जो कुरान है उसके अल्लाह के कलाम होने में कोई शक नहीं। तो अहले मक्का जो थे वो क्या कहते थे कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहते थे, और फिर वो ये कहते थे कि ये वाकया जो है पता नहीं जो कोई आके इनको सिखा जाता है या क्या बात है, और जिसको ये जो है वो वही कहते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे अहले मक्का का जो रवैया है उसकी अल्लाह ताला तरदीद कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसने देखा था दिल से, उसे झुटलाया नहीं। अब क्या तुम झगड़ते हो जो उन्होंने देखा है, तो हकीकत का मुशाहिदा किया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको दिली इत्मीनान था, दिन का धोखा नहीं था, नज़र का धोखा नहीं था, दिन का ऐसा नहीं था कोई दिन में ख्वाब देखा हो, कोई जिन भूत का करतब हो, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि जिब्रील अलैहि सलाम को उनकी असली शक्ल में देखा था कि उनके 600 पर थे। वलकद राहु नज़लतन उखरा, और एक मरतबा फिर उसने सिदरतुल मुंतहा के पास देखा, इंदहा जन्नतुल मावा, जहां पास ही जन्नतुल मावा है। अब आयत नंबर 13 से 18 तक ये वो आयात हैं जो कि वाकया मिराज से मुतल्लिक हैं, क्योंकि एक दफ़ा आप देखें कि पिछली आयात में आपने ये देखा कि हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम जो हैं उन्होंने किस तरह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आयतें वही जो है वो नाजिल की। और ज़्यादातर मुफस्सरीन की ये राय है कि ये जो वही का ज़िक्र है और जिब्रील अलैहि सलाम को देखने का, तो ये इब्तदाई ज़माना है वही का, जब सूरत मुदस्सिर की आयात फ़तरतुल वही के बाद नाजिल हुई थी, तो ये वो ज़माना है। और आयत नंबर 13 से लेकर 18 तक की आयात जो हैं ये वाकया मेराज से मुतल्लिक हैं, क्योंकि दूसरा मौका था ना जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम को उनकी असली शक्ल में देखा था। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उसका जिक्र कर रहे हैं, फरमाया इंदा सिदरतिल मुंतहा, और एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहि सलाम को सिदरतुल मुंतहा के पास देखा। सिदरा किसे कहते हैं? अरबी जबान में बेरी के दरख्त को सिदरा कहा जाता है, और मुंतहा जो है नून हा या इसका मादा है, और आखिरी सिरे को कहते हैं। तो सिदरतुल मुंतहा इसके मानी हैं वो बेरी का दरख्त जो आखिरी और इंतहाई सिरे पर वाक्या है, बेरी का वो दरख्त जो आखिरी और इंतहाई सिरे पर वाक्या है। मुफस्सरीन कहते हैं कि यहाँ पर हर आलिम का इल्म ख़त्म हो जाता है, आगे जो कुछ है उसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, तो आलमे मादी की आखिरी सरहद वो बेरी का दरख्त है। और वो बेरी का दरख्त कैसा है, उसकी हकीकत, नौइयत, कैफियत कैसी है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। और उसके बारे में जो हमें अहदीस से पता चलता है, तो वो आप सिदरतुल मुंतहा के बारे में, आप जब आपने मेराज का वाक्या पढ़ा था तो आपने वहाँ पे भी उसके बारे में पढ़ा था। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब सिदरतुल मुंतहा के जब आप पास पहुँचे तो आपने कहा कि अब यहाँ पर जो है ना, आगे अब कोई और फटक नहीं सकता। फरिश्ते भी इस मकाम से आगे नहीं जा सकते, कोई भी वहां से आगे नहीं बढ़ सकता। और जो बेरी का ये दरख्त था, तो इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके क्या नज़ारे देखे थे, क्या था इसके पास। इंदहा जन्नतुल मावा, वहां पे सिदरतुल मुंतहा के पास, जहां पास ही जन्नतुल मावा है। अब आप देखें कि मावा का लफ्ज़ जो है ये आवा से है और पनाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देखें कि जन्नत जो है, इसके बहुत से नाम हमें कुरान से मिलते हैं, और ये जो नाम हैं ये 11 हैं जो हमें कुरान से मिलते हैं। एक है जन्नत, और जन्नात का लफ्ज़ आया है कुरान में, एक बाग नहीं है, बहुत से, और 69 मर्तबा ये लफ्ज़ आया है। फिर दूसरा है दारुसलाम, तीसरा है दारुल खुल्द, चौथा है दारुल मुकामा, पांचवा है जन्नतुल मावा, जो हमारा यहाँ पे उनवान भी है, और ऐसी जन्नत जहाँ ठिकाना मिल सके, ये जन्नतियों का मेहमानी का पहला मकाम है, ये रेस्ट हाउस है। छठा है जन्नाते अदन, सातवां है दारुल हयावान, आठवां है अलफिरदौस, नौवां है जन्नातुन नईम, दसवां है अल मकामुल अमीन, और ग्यारहवां है मिक़ादे सिद्क, मिक़ादे सिद्क। तो जन्नतुल मावा जो है, इसको इसलिए कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मावा और मस्कन यही था, और बास कहते हैं कि रूहें यहाँ पर आकर जमा हो जाती हैं, इसलिए इसको जन्नतुल मावा के नाम से याद किया जाता है, जन्नतुल मावा। मुफस्सरीन कहते हैं वो जन्नत जो कयामगाह बने, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये वही जन्नत है जो आखिरत में अहले ईमान और मुत्तकी लोगों को मिलने वाली है। हजरत कतादा कहते हैं कि ये वो जन्नत है जिसमें शहदा की रूहें रखी जाती हैं, इससे मुराद वो जन्नत नहीं जो आखिरत में मिलने वाली है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहते हैं कि आखिरत में जो जन्नत अहले ईमान को दी जाएगी वो आसमान में नहीं है, बल्कि उसकी जगह यहीं ज़मीन में है, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। तो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि उस वक्त जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के पास देखा, जहाँ पास ही जन्नतुल मावा है। इज यक्षा सिदरा तमा यक्षा, उस वक्त सिदरा पर छा रहा था जो कुछ के छा रहा था। सिदरा पर क्या छा रहा था उस दिन? अब आप देखें कि यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि उस वक्त सिदरा को खास तौर पर सजाया गया था, खास तौर पर उसे जो है वो सजाया गया था। मुफस्सरीन कहते हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, सही मुस्लिम की रवायत है कि उस वक्त सिदरतुल मुंतहा पर सोने के बने हुए परवाने हर तरफ से गिर रहे थे। ऐसा मालूम होता था कि इस दिन सिदरतुल मुंतहा को खास तौर पर सजाया गया है, जिसमें आने वाले मेहमान नबी का जो है वो एजाज और इस्तकबाल मतलूब था। तो ये है सिदरतुल मुंतहा की कैफियत कि जब शबे मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा का मुशाहिदा किया, आपने देखा कि सोने के परवाने इसके गिर्द मंडला रहे हैं, फरिश्तों का अक्स इस पर पड़ रहा था और रब की तजल्लियात का मजहर भी वहीं था। और यही वो जगह है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 वक्त की नमाजें, सूरत बकरा की आखिरी आयात और मुसलमान की मगफरत का वादा जो शिर्क की आलूदगियों से पाक होगा वो दिया गया। ये सही मुस्लिम की रवायत है। तो कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त सिदरा पर छा रहा था, जो कुछ के छा रहा था, तो बेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशुमार रूहें और फरिश्ते उस दरख्त पर टूटे पड़ रहे थे और इसके इर्द गिर्द मंडलाते फिरते थे। आयत नंबर 17, मा जागल बसरु व मा तगा, निगाह ना चुंदियाई और ना ही हद से मुतजावज़ हुई। अब आप देखें कि यहाँ पे जागा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जागा, और आप ये पढ़ चुकी हैं ज़ैग, ज़ा या गैन इसका मादा है ज़ैग, और इसके मानी क्या होते हैं, बहकना, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना। मा ज़ाग़ल बसरु, माइल ना हुई आँख, तो आँख जो है जब ये सब नज़ारा देख रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख किसी और तरफ माइल नहीं हुई, वमा तगा और ना ही हद से बड़ी, बल्कि आपकी नज़र बहकी नहीं, चुंदियाई नहीं और ना ही आपकी आँख जो है वो हद से बड़ी। लक़द रा मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, और उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर अपने रब की क्या बड़ी बड़ी निशानियाँ देखी थी? मुफस्सरीन कहते हैं कि रब की बड़ी बड़ी निशानियों से मुराद है, नंबर एक कि आपने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उफ़क़े आला पर देखा था, और दूसरे इसके मानी हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो कि उस वक्त अपनी असली शक्ल में थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का मुशाहिदा किया तो बाज़ कहते हैं कि ये अल्लाह की अजीम तरीन निशानी थी और सब्ज़ कपड़ा था जिसने उफक को ढांप रखा था और आपने उसको देखा है, और बाज़ कहते हैं कि हज़रत जिब्रील हैं जिन्होंने सब्ज़ लिबास में आसमान और ज़मीन की दरमियानी मुसाफत को ढांक रखा था और इनके 600 पर थे। तो अल-कुबरा ये आयात की सिफ़त है और इसमें वो तमाम अजीम तरीन निशानियाँ मौजूद हैं, शामिल हैं, जिनका आपने उस रात सिदरतुल मुंतहा की तरफ जाते हुए और वहाँ से लौटते हुए जो है वो मुशाहिदा किया था। तो एक तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी थे, और दूसरा आपको जन्नत और जहन्नुम के मनाजिर दिखाए गए, ये भी अल्लाह की निशानियाँ हैं। तीसरा आपकी मुख्तलिफ पैगम्बरों के साथ जो है वो मुलाकात आपकी करवाई गई, आपको जन्नत की नेमतें और जहन्नुम की जो सज़ा है वो तमसील की शक्ल में जो है वो आपको दिखाई गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या थी, ये अल्लाह ताला की बिला शुबा जो है वो बड़ी बड़ी निशानियाँ थीं। और जमहूर मुफस्सरीन की राय है कि आपने ये सब निशानियाँ देखी थी, लेकिन बड़ी निशानी से मुराद ये नहीं है कि आपने जो है वो अल्लाह ताला को देखा था, बल्कि अल्लाह ताला की जो कुदरत की मुख्तलिफ बड़ी बड़ी निशानियां हैं वो आपने देखी थी। आयत नंबर 19 से लेकर 28 तक मुशरकीन का जो अकीदा शिफात है उसकी तरदीद की गई है। मुशरकीन क्या करते थे? वो ये समझते थे कि हमारी ये जो देवियां हैं ये हमारी अल्लाह के पास सिफारिश कर देंगी। अफारे तुमुल लाता वल उज्जा व मनात सातल उखरा। अब जरा बताओ, तुमने कभी इस लात और इस उज्जा और तीसरी एक और देवी मनात की हकीकत पर कुछ गौर भी किया? अफा रही तुम, और रही तुम वैसे तो कि क्या तुमने देखा, लेकिन यहाँ पे गौर व फिक्र की दावत के लिए इस्तेमाल हुआ है कि क्या तुमने गौर किया कि अल्लाता लात वल उज्जा और उज्जा व मनाता और तीसरी देवी मनात वल मनाता सालिसा सालिसता और तीसरी जो देवी है मनात अल उखरा एक और तीसरी एक और देवी मनात की हकीकत पर तुमने कुछ गौर भी किया। अब आप देखें कि लात लात जो है ये इनकी एक देवी थी। इसका मादा है लाम हमजा ता। ये इनका जो है वो फर्जी बुत था और ये कहते थे कि ये अल्लाह की तानीस है और इसके मानी मुड़ने झुकने के किए जाते हैं। इसके मानी मुड़ने और झुकने के किए जाते हैं क्योंकि मुशरिकीन इबादत के लिए इसकी तरफ रुजू करते थे और झुकते थे और इसका तवाफ करते थे, इसलिए इसको लात कहा जाने लगा। दूसरी है उज्जा। उज्जा जो है ऐन जाजा इज्जत से है और मानी है इज्जत वाली देवी। अल्लाह का नाम है ना अजीज, तो इसी से इन्होंने जो है वो इसकी जो है वो तानीस बना ली, अजू और अजीजा। तो कहते हैं कि ये कुरैश की खास देवी थी। इसका इस्तेहान यानी स्टैचू मक्का और ताइफ के दरमियान वादी नखला में वहां पे इन्होंने रखा हुआ था और ये लोग जो थे इसकी पूजा करते थे। इब्ने हशाम की रवायत है कि अबू ओहैहा जब मरने लगा, हा या हा और फिर हा मरने लगा, तो अबू लहब इसकी आदत के लिए गया, देखा कि वो रो रहा है। अबू लहब ने कहा कि ए अबू ओहैहा तुम क्यों रोते हो? उसने कहा, पूछा अबू लहब ने कि क्या तुम मौत से डरते हो, हालांकि वो सभी को आनी है। इसने कहा, खुदा की कसम मैं मौत से डर कर नहीं रोता, बल्कि मुझे ये गम खाए जा रहा है कि मेरे बाद उज्जा की पूजा कैसे होगी। अबू लहब बोला, इसकी पूजा ना तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी खातिर होती थी और ना तुम्हारे बाद उसे छोड़ा जाएगा। इस पर अबू ओहैहा ने कहा, अब मुझे इत्मीनान हो गया है कि मेरे बाद मेरी जगह जो है कोई संभालने वाला है। तो ख़ास तौर पर वो इसके लिए नजरें चढ़ाता, कुर्बानियाँ करता, लोग इसकी ज़्यारत को आते और तमाम बुतों से बढ़कर उज्जा की ये इज्जत करते थे। और तीसरी इनकी देवी थी मनात, जिसका रूट है जिसका मादा है रूट मीम नून वाओ। और इसका स्टैचू भी इस्तेहान मक्का और मदीना के दरमियान एक किनारा था कुदैद, वहाँ पर था। खुजा औस और खजरत के लोग इसकी इबादत करते, इसका हज और तवाफ़ किया जाता और इस पर नज़र की कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती और मिनात की ज़्यारत के लिए वो लब्बैक लब्बैक की सदाएँ बुलंद करते। तो जो इसकी मनात देवी के लिए हज और उम्रे की नियत करते थे ना, वो सफा और मरवा के दरमियान फिर सही नहीं करते थे। अल्लाह ताला कहते हैं, ज़रा बताओ तो सही, तुमने कभी इस लात और इस उज्जा, तो लात था ताइफ वालों की, लात थी ताइफ वालों की देवी और उज्जा थी कुरैश वालों की और मनात थी मक्का और मदीना के दरमियान ये औस और खजरज वालों की। अलकुमुज़ ज़करु वलहुल उन्सा, क्या बेटे तुम्हारे लिए हैं और बेटियां अल्लाह के लिए हैं? क्योंकि मुशरिकीन मक्का फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे, यहाँ इसकी तरदीद की जा रही है। इसका ये नहीं मतलब कि अल्लाह के लिए बेटे हो सकते हैं, बल्कि ये कि कैसा तुम अल्लाह से मजाक करते हो कि जो अपने लिए पसंद भी नहीं करते तो تو اسے تم اللہ کے ساتھ خدائی میں شامل کر دیتے ہو. تلکا اذن قسمتن دیزا, یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. یہاں پہ جو قسمتن لفظ ہے اس کے معنی ہیں تقسیم کے, اور جو لفظ ہے دیزا اس کا مادہ ہے دواد یا زا, اس کے معنی ہیں ظلم کرنا, ناقص تقسیم کرنا, دھاندلی کرنا, ناانصافی کرنا. غیر موزوں تقسیم کرنا, ظالمانہ تقسیم. تلکا اذن قسمتن دیزا, یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی, یہ تو بڑی عجیب تقسیم ہوئی. ان ہیا الا اسماءن, ان نہیں ہیں یہ الا مگر اسماءن کچھ نام, سمیتموہا جو تم نے رکھ لیے ہیں, انتم تم نے, وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے. تو یہ جو تم نے نام رکھ لیے ہیں لات عزا منات وغیرہ, یہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے, بس یہ کچھ نام ہے چند جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے ان کے لیے کوئی سند بھی نازل نہیں کی کہ جن کو تم دیوی اور دیوتا کہتے ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اتھارٹی لیٹر نہیں آیا کہ یہ جو ہے اللہ کی خدائی میں جو ہے وہ شامل ہیں. ان یتبعون الا الظن, نہیں مگر وہ پیروی کرتے مگر گمان کی, یعنی یہ ان کا وہم ہے, ان کا گمان ہے. وما تحوی الانفس, اور خواہشات نفس کی جو ہے وہ پیروکار بنے ہوئے ہیں. تو تحوی ہا و یا, بلندی سے نیچے گرنا, اور یہ لفظ احوا خواہشات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وما تحوی, اور جو یہ خواہش کرتے ہیں, الانفس ان کی نفس, تو یہ اپنی خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهُمُ الْهُدَى, حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. یعنی ہر زمانے میں نبی آئے اور انہوں نے بتایا کہ اصل پیغام توحید کا پیغام ہے, ہدایت ان کو دی. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ لوگوں تم سب کا خدا ایک خدا ہے. تو یہ جو آیت نمبر 23 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تین باتوں سے ان کا جو عقیدہ شفاعت تھا یا ان کا جو شرک پرستی تھی اس کی تردید کی ہے. نمبر ایک, کہ تم نے فرضی نام رکھ لیے ہیں, کوئی حقیقت نہیں ہے, نہ ان کے پاس اختیارات ہیں, نہ الوہیت کی ان کے اندر صفات پائی جاتی ہیں. نمبر دو, یہ تمہارے گمان کی پیروی ہے. نمبر تین, خواہشات نفس کے تم مرید بنے ہوئے ہو, اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے. ام للانسانی ما تمنا, کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کہ انسان کا جو کچھ دل چاہے, جو وہ آرزو کرے, تو کیا وہی ممکن ہے کہ ہر شخص جو تمنا کرے, جو خواہش کرے, تو کیا وہی چیز صحیح ہے کہ اس کو وہ معبود بنا لے؟ اور انسان اپنے ان معبودوں سے جو بھی خواہشات وہ چاہے تو کیا وہ پوری ہو سکتی ہیں؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى, دنیا اور آخرت دونوں کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہارے جو بت ہیں, تمہاری جو دیویاں ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دنیا اور آخرت دونوں کا مالک اللہ ہے. آخرت تو آخرت ہے, اور وَالْأُولَى یہ پہلے کے لیے آتا ہے, اور اس سے مراد جو ہے وہ دنیا ہے. وَقَمْ مِمْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. وَقَمْ مِنْ مَلَكٍ, اور کتنے ہی فرشتے ہیں, فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں, لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا, کہ جن کی شفاعت کچھ کام نہیں آ سکتی, إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى, جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اسے اس کی اجازت نہ دے دے جس کے لیے وہ بات کو سننا چاہتا ہے اور وہ اس کو پسند بھی کرے. اب یہاں پہ آیت نمبر 26 میں بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے جو اللہ کی مقرب ترین مخلوق ہیں ان کو بھی شفاعت کا حق جو ہے وہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر اللہ دینا چاہے، الا من بعد یاذن اللہ. پہلے بات کیا کہی، آسمانوں میں فرشتے ہیں اللہ کے بڑے قریب، لا تغنی شفاعتہم شیئن، ان کی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں دے گی. پھر کہا الا من بعد یاذن اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہی ان کو جو ہے وہ اجازت دے دے. لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے. نمبر تین، و یرضا، اور جس کے لیے سفارش اللہ سننا پسند بھی کرے. تو ایسا کیسے ہوگا کہ فرشتے جو ہیں وہ مشرکین کے لیے شفاعت کر دیں؟ تو یہاں پہ عقیدہ شفاعت جو ہے اس کی تین کنڈیشن کو رکھا گیا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر فرشتے بھی شفاعت نہیں کر سکتے جو مقرب ترین مخلوق ہیں. نمبر دو، اللہ اسی کو اجازت دے گا جس کے لیے اللہ چاہے گا، جس کے لیے اللہ پسند کرے گا. اور نمبر تین، و یرضا، اور جس کے حق میں سفارش سننا اللہ جو ہے وہ پسند کرے گا، سننے پر راضی ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جو مجرم ہیں، نافرمان ہیں، مشرک ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں، تو فرشتے تو ان کی سفارش نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ اللہ پسند ہی نہیں کرے گا کہ ان کے لیے اجازت دے. تو نیک اور متقی لوگ ہیں انسان ہونے کے ناطے، اگر ان سے کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے اور اگر اللہ چاہے تو اس کی اجازت دے دے. تو جیسے کسی کی دامن میں کسی کے پاس کچھ نیکیاں ہوں اور اس کو گریس مارکس چاہیے، بس تھوڑے سے، جیسے پاس ہونے کے لیے 60 نمبر چاہیے تھے، کسی کے 58 ہو گئے ہیں، 57 ہو گئے ہیں، دو چار کم رہ گئے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کسی کو اجازت دے دیں اور کوئی سفارش کر دے، جیسے کہ فرشتے یا کوئی، لیکن وہ لوگ جو بدعملی کی زندگی گزارتے ہیں اور کچھ کرتے بھی نہیں ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ نبی سفارش کر دیں گے، فلاں ولی کر دے گا، اور فلاں پیر، اور پھر فلاں فرشتے، اور فلاں دیویاں، تو یہاں پہ اس کی جو ہے وہ تردید کی جا رہی ہے کہ عملی زندگی جو ہے وہ اطاعت کی اور ایمان کی زندگی ہونی چاہیے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانسا. فرمایا، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے یاد کرتے ہیں. لا یسمون، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لا یسمون، لا یسمون وہ نام دیتے ہیں الملائکہ تا فرشتوں کے، تسمیہ تا نام، الانسا عورتوں جیسے. تو عجیب بات ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے اور فرشتوں کو عورتوں کے، دیویوں کے نام دے دیتے ہیں. وما لہم بہ من علم، اور ان کے پاس اس بات کا کوئی علم بھی نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن، وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ شرک کی نفی کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی مشرکین کے حق میں سفارش کرنے کا حق نہیں دے گا، اس لیے کہ شرک جو ہے وہ ناقابل معاف جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے. دوسری بات جو پتہ چلتی ہے کہ جو ہدایت ہے وہ اللہ کی اندھی بانٹ نہیں ہے. اگر کوئی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا. جو گمان کی اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ یہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے. تو یہ تھا ہمارا سورۃ النجم کا پہلا سبق، آیت نمبر 1 سے لے کر 28 تک. تو اس میں ہمارے سامنے عمل کے کیا اصول ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. نمبر دو، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی معزز اور بہترین صفات اور خوبیوں کے مالک فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے. نمبر تین، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، بالکل جو وہی ہے اس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے. اور نمبر چار، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر معتبر اور مقرب اور معتمد ترین فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے. تو وہ رب जो कुरान जैसा कलाम नाजिल कर सकता है, जो प्यारे रसूल को पैगंबर बना सकता है, वो रब चाहे तो कयामत ज़रूर लेकर आएगा, जहाँ पे फिर हिसाब किताब जो है वो होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो दलाइल दिए हैं, जो बातें सामने रखी हैं, तो इसमें जो नुमाया बात है वो शिर्क को रद्द किया गया है, शिर्क को। और ख़ास तौर पे फिर वो लोग जो कि शिफात के अकीदे को लेकर बैठे रहते हैं और अमली ज़िंदगी जो है उनकी बेअमली की और बदअमली की ज़िंदगी होती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला तो फरिश्तों को भी जो है वो सिफारिश की इजाज़त जो है वो नहीं देगा। तो फिर क्या चाहिए कि ईमान लाएं अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, और जिब्रील अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, और अल्लाह की भेजी हुई किताब पर, और जो है वो बेहतरीन मुसलमान बने। और अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी मुशरिकाना रस्म और रवाज हैं ख़ानदान के अंदर, घर के अंदर, सोसाइटी के अंदर, तो उनको सीने से लगाए बैठे हैं, तो उनको जो है वो ख़िज़ां के पत्तों की तरह जो ज़र्द होते हैं तो हवा के एक झोंके से उड़ने लगते हैं, तो उनको जो है वो अपने से दूर फेंक देना चाहिए, उनको अपने से दूर कर देना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको बेहतरीन मुसलमान बनाए, अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले, और ईमान की दौलत से मालामाल कर दे। इस हदीस से मैं आज के सबक को इसको ख़त्म करती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हर वक्त आखिरत की फ़िक्र करते थे, और अगर थोड़ी देर के लिए आखिरत उनकी नज़रों से ओझल होती तो वो डरते थे कि कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए। हज़रत हंजला रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक दिन हम रसूल अल्लाह की महफ़िल में मौजूद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो प्यारे रसूल ने फ़रमाया जो बातें की तो उससे हमारे दिल नरम हो गए और हमारी आँखों से आंसू बहने लगे और हमें अपनी हकीकत मालूम हो गई। फिर मैं आपकी महफ़िल से उठकर घर आया, दुनिया का जिक्र शुरू हो गया, बच्चों के साथ बातें और बीवी के साथ हंसी मजाक, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में मेरे दिल की जो हालत थी वो बाकी ना रही। मैंने अपने दिल का जायज़ा लिया तो मैंने कहा कि हंजला तू तो मुनाफिक हो गया। इस पर मैं अफसोस करता हुआ, रंज करता हुआ, अपने आप को मलामत करता हुआ घर से निकला और कह रहा था हंजला हंजला तो मुनाफिक हो गया। सामने से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ ला रहे थे, मैंने उनको देखा तो मैंने कहा अबू बकर हंजला तो मुनाफिक हो गया। वो सुनकर बोले सुभान अल्लाह, हंजला क्या कह रहे हो रज़ी अल्लाह अन्हुमा। मैंने सूरत हाल बयान की कि जब हम प्यारे रसूल की महफ़िल में होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप दोज़ख़ और जन्नत का ज़िक्र करते हैं तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं गोया दोज़ख़ और जन्नत हमारे सामने है, मगर जब वहाँ से आ जाते हैं तो ये कैफियत बाकी नहीं रहती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी अपना मुहासबा किया, अपना जायज़ा लिया, कहने लगे हंजला मेरी भी यही हालत है। अब दोनों बहुत परेशान हुए, रसूल अल्लाह की खिदमत में हाज़िर हुए। हज़रत हंजला रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की कि हुजूर मैं तो मुनाफिक हो गया। आपने सवाल किया क्या बात हो गई? हंजला रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा जब हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और आप जन्नत और दोज़ख़ का ज़िक्र करते हैं तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं गोया जन्नत और दोज़ख़ हमारे सामने है, लेकिन जब आपकी महफ़िल से वापस लौट आते हैं बीवी बच्चों और घर के कामों में मशगूल होते हैं तो बात बाकी नहीं रहती। हुजूर ने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर हर वक्त तुम्हारा वही हाल रहे जैसा मेरे सामने होता है तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर और रास्तों में तुम्हारे साथ मसाफिया करने लगें। लेकिन हंजला ये कैफियत गाहे बगाहे होती रहती है, ये कैफियत गाहे गाहे ही होती है। तो अब आप देखें कि जब सोबते सवाले मिलती है तो फिर ये हाल हो जाता है जो कि हज़रत हंजला रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया। और जब कुरान की महफ़िल और सीरत और हदीस की महफ़िल से बाहर की दुनिया में इंसान आता है तो फिर जो है वो क्या करता है कि उसको अपना ईमान जब घटता हुआ महसूस होता है तो फिर वो परेशान हो जाता है, फिर वो कदम फूंक फूंक कर रखता है, फिर वो डरता है। और एक मोमिन और मुत्तकी की सारी दौड़ धूप का असल मकसद अपने खालिक और मालिक को राजी करना है, अपनी आखिरत को कामयाब बनाना है, जन्नतुल फिरदौस का मालिक बनना है, ना कि दुनिया कमाना और आखिरत को भूल जाना। तुझसे मांगू मैं तुझी को कि सभी कुछ मिल जाए, तुझसे मांगू मैं तुझी को कि सभी कुछ मिल जाए, 100 सवालों से मेरा एक सवाल अच्छा है। मुझे अपनी पस्ती की शर्म है, तेरी रफ़तों का ख्याल है, मगर अपने दिल को मैं क्या करूं, उसे फिर भी शौके विसाल है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।